समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, महानगरों का हाल जानेंगे, मौसम की बात करेंगे, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र भी करेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले तो एक बार फिर से मेरा नमस्कार, और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड एज फरहत हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। एंड ऑफ कोर्स व्हाट मेक्स आवर शो स्पेशल फरहत इज कि हम लोग मुख्तलिफ मेट्रोज में जाते हैं, एंड सो दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर ओन सिटी। And of course, some very great personalities will be remembered in today's show. More on that after some time. So let's start with the headlines first.
जी सारा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे, वहां वे 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी जिला अदालत से स्वारगेट तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। सुपर कम्प्यूटिंग तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के अंतर्गत देश में विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कम्प्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए ये सुपर कम्प्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे। 850 करोड़ रुपए की यह परियोजना मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए भारत की गणना संबंधी क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट सियाचेन बेस कैंप टुडे। During her visit, the president will interact with the troops posted there. And in Jammu and Kashmir, a voter turnout of 57.03% was recorded in the second phase of assembly polls yesterday. The Election Commission said voting was held for 26 assembly constituencies spread across 6 districts peacefully without any incident of violence. The 6 districts that went to polls in the second phase were Budgam, Gandharbal, Poonch, Rajouri, Riyasi and Srinagar. As per the Election Commission's data, Sri Mata Vaishno Devi seat recorded the highest voter turnout with 80.74%, followed by Surankot at 74.95% and Punch Haveli at 74.66%. Among the districts, Riyasi topped at 74.7%, with Punch district a close second at 73.8%. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar said that the elections in Jammu and Kashmir are history in the making as voters have embraced the democratic process over violence and boycott. He highlighted that strong security measures were in place, including webcasting in all polling stations to ensure transparency. Mr. Kumar lauded the voters and said that the second phase turnout is a resounding statement of their belief in democracy. Voting for 40 seats in the third and final phase will be held on the 1st of October, while counting of votes will be held on the 8th of October.
और सारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बड़ी संख्या में मतदाताओं की हिस्सेदारी के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने रियासी, पुंछ, राजौरी, गंदेरबल, बडगाम और श्रीनगर के मतदाताओं को बधाई दी। श्री सिन्हा ने कहा कि रिकॉर्ड मतदान जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र का उज्ज्वल उदाहरण है। वहीं हरियाणा में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को कल संबोधित किया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पक्ष में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के अंतर्गत हरियाणा ने उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है।
India has called for urgent reforms of the international decision-making structures, especially the Security Council, to give the Global South its due representation. Speaking at the Foreign Ministers' meeting of the G20 in the US yesterday, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that the UN is a prisoner of the past and it must evolve with the world. Dr. Jayashankar stressed that the Global South must be given the legitimate voice. He emphasized on the urgent need to reform the UN to ensure it is representative, credible and effective. Mr. Jayashankar said the reforms should include expansion of both permanent and elected seats on the Security Council. The ministers of the G20 met on the sidelines of the UN General Assembly's high-level meeting in the US. In a speech that dealt with international financial and development organizations, Dr. S. Jayashankar said that it was imperative to bring in reforms to make the international financial architecture more robust, expansive, and effective. He emphasized that during India's G20 presidency, India set up a panel of international economic experts to recommend reforms to the multilateral development banks, and the suggestions were adopted by the G20. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar also held a bilateral meeting with his Russian counterpart Sergei Lavrov yesterday on the sidelines of the 79th UN General Assembly in New York. Moreover, Dr. Jayashankar met several delegates and diplomats on the sidelines of UNGA, including Kazakhstan Foreign Minister Nursultan, Morocco Foreign Minister Nasser Bourita, Prime Minister of Belgium Alexander De Croo, and Swiss Federal Councillor Ignacio Cassis, among many others.
इजराइल तथा हिजबुल्ला के बीच संघर्ष में बढ़ोतरी के मद्देनजर इजराइल के सेना प्रमुख ने लेबनान में आशंकित हमले के लिए सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश तब दिया गया जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी बढ़ा दी। वर्ष 2006 के बाद यह सबसे घातक हवाई हमला है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बौहबीब के अनुसार इस युद्ध के कारण लेबनान में लगभग 5 लाख लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। लेबनान के वित्त मंत्री अमीन सलाम ने तत्काल राजनीतिक समाधान के संभावित नुकसान प्रति आगाह किया है। उन्होंने एक महीने के मानवीय संकट का व्यय कम से कम 13.5 करोड़ होने का हवाला दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक संदेश में कहा कि हिजबुल्ला को अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने हजारों इसराइल वासियों को उत्तरी सीमा क्षेत्रों में स्थित उनके घर वापसी में सुविधा पहुंचाने की अपनी वचनबद्धता दोहराई।
The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert over parts of Maharashtra, Goa, Konkan, Gujarat, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal today due to extremely heavy rainfall. The IMD has also forecast heavy to very heavy rainfall over Saurashtra, Kutch and Arunachal Pradesh today, along with East Uttar Pradesh tomorrow. Meanwhile, heavy rainfall conditions will be present over Uttarakhand, Gujarat, West MP and Eastern MP till tomorrow. In East India, these conditions will also prevail over Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Jharkhand, Orissa, Gangetic West Bengal and Bihar during the next 2 days. The weather agency has also forecast similar conditions in South India over Telangana and coastal Karnataka today. Light rain and thunderstorms are likely over Delhi and adjoining NCR area today.
और सारा मौसम के बाद खेलों का रुख कर लेते हैं। भारत के कमल चावला ने मंगोलिया के उलानबटार में IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीत ली है। चावला ने फाइनल में पाकिस्तान के अज्जाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF विश्व खिताब जीता। भारत के लिए मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और कीर्तन पांडियन ने 3 और कांस्य पदक जीते। चावला वर्ष 2017 में इस टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। महिला वर्ग में भारत की विद्या पिल्लई अपना खिताब नहीं बचा सकी। वहीं सेमीफाइनल में हांगकांग की एनजी ऑन यी से 2-4 के स्कोर से पराजित होने के बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का, तो सारा क्या है चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में खास।
वेल फॉर अस लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। The Tourism Authority of Thailand will host a 3-day Amazing Thailand Fest and a 1-day Amazing Thailand Directors Cut event in Chennai from 27th to the 29th of this month to promote tourism to that country. The event will be held in Express Avenue. Speaking to reporters, Executive Director said that cultural programs will be held to show the rich cultural heritage of Thailand and the connection it has with India. There will be a cultural performance in which traditional silk weaving dance and long drum dance with a xylophone performance from the Thai movie The Overture Nura and Leke Hulu dance of Thailand will be combined with Bharatnatyam. Quite exciting for us because I'm sure that people of Chennai would look forward to this cultural extravaganza that's just going to happen, inviting people to this amazing country of Thailand. Moving on, the Greater Chennai Corporation has decided to float municipal bonds to bring in more funds to address the infrastructural needs of the city. It is a centrally approved model exclusive for urban local bodies to mobilize funds from investors and commercial establishments for interest. This scheme is aimed at enabling local bodies to execute essential projects without relying on state or central grants. Moving on to Bengaluru, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will inaugurate KHIR City today in Bengaluru. The high-tech city will be a hub for knowledge, health, innovation and research-based companies. It will host campuses of globally renowned educational and medical institutions, research centres and healthcare facilities. It is expected to attract investments worth 40,000 crore rupees, boosting the state's economy. The startups, bioscience and semiconductor companies will be given priority to set up facilities in KHIR. And now moving on to Hyderabad, the Telangana state government is planning to launch an internship program soon for engineering graduates to improve their job prospects. Chief Minister Ariyamankar Reddy said this while speaking after launching a skill training program for students in banking, financial services and insurance, BFSI, in Hyderabad. He said a strict vigil will also be maintained on the engineering colleges in the state to ensure proper educational infrastructure is in place to upskill the students. So, Farah, this was the latest that I have from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the buzz from Delhi?
जी सर, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से. दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है. सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से आरंभ होगी. दो दिवसीय सत्र में दिल्ली की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होने की संभावना है. आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का यह पहला सत्र होगा. वहीं दिल्ली सरकार ने कल राजधानी में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अंतर्गत दिल्ली के अकुशल मजदूरों को 18,066 रूपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 रूपये, अकुशल श्रमिकों को 21,917 रूपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी. वेतन की नई दरें अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी. मुख्यमंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में श्रमिकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. और अब अगर मुंबई का रुख करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग के हिस्से के रूप में एक समर्पित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आउटरीच प्रकोष्ठ की शुरुआत की है. ये प्रकोष्ठ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के साथ सीधे जुड़ाव पर ध्यान केन्द्रित करेगा और उन्हें भारतीय प्रतिभूति बाजार तक निर्बाध पहुंच में भी सहायता देगा. एफपीआई आउटरीच प्रकोष्ठ आवेदन से पहले मार्गदर्शन भी करेगा. बदलती वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के जवाब में बृहन्मुंबई नगर निगम ने वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए गहन शोध और समय पर कार्रवाई अनिवार्य कर दी है. बीएमसी मुख्यालय में पर्यावरण परिवर्तन हरित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता शीर्षक वाली बैठक के दौरान प्रमुख भूषण गंगारे ने हरित पहल को बढ़ावा देने में प्रभावी पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया. बैठक का उद्देश्य वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने और मुंबई को अधिक पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु लचीला शहर बनाने में सहयोग करने के लिए सभी बीएमसी विभागों को एकजुट करना था. वहीं अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं. मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान, पूर्वी मिदनापुर, पुरुलिया, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. ये जिले पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल के जिलों में भी अत्यंत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का कल दोपहर निधन हो गया. वे 61 वर्ष के थे और लीवर कैंसर से पीड़ित थे. उत्तर 24 परगना जिले के बोईरा गांव स्थित अपने आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली. महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम की बात कर लेते हैं. सारा, आज मौसम जो है वो करवट लेने की दिशा की ओर बढ़ रहा है और कई शहरों में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो आज बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. इसके अलावा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से तेज हवाओं के चलने के आसार हैं. आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश और आंधी आई कल. मौसम विभाग ने मुंबई और थाने के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज सुबह तक अत्यधिक भारी बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवा चलने का अनुमान है. बृहन्मुंबई नगर निगम ने घोषणा की है कि आज मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. वहीं भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है. पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान, पूर्वी मिदनापुर, पुरुलिया, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में आज काफी तेज वर्षा हो सकती है और ये जिले पहले से ही बाढ़ की स्थिति में हैं.
Yes, Bharat, so one can say that probably the monsoons are retreating from the north of India, but if we talk about southern India and some places in the eastern part of the country, the rains are still there. So, well, if we talk about southern India and start with Chennai, Chennai is expected to have a partly cloudy sky and there's a possibility of moderate rain or thunderstorm. Temperature in Chennai would hover between 25 and 36 degrees Celsius. Bengaluru is also expected to have a cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 21, while maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad will also have a cloudy sky today, and one or two spells of rain or thunder showers might occur. Temperature will hover between 23 and 32 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. आज है 26 सितंबर और आज ही के दिन 1953 में अमेरिका और स्पेन ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए.
And well, on this day in 1777, British troops occupied the Philadelphia during the American Revolution.
1996 में अंतरिक्ष यान STS-79 पृथ्वी पर वापस लौटा.
In 1815, the Holy Alliance of Russia, Austria and Prussia was formed after the final defeat of Napoleon.
1998 में आज के दिन सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा.
In 1901, Britain annexed the Ashanti Kingdom and placed it under the governor of Gold Coast in Ghana. In 1914, the Federal Trade Commission was established on 26 September 1914. Also in 1917, the Battle of Polygon Wood began.
और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सन 2004 में अमेरिका ने असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत को तकनीक देने का निर्णय किया.
And in 1931 at Lancashire, Mahatma Gandhi saw textile workers hurt by the Indian boycott, but he said that home spinning must go on. Also in 1985, P.T. Usha set a record for 100 meters women in 11.39 seconds at Jakarta. Farhat, today is World Maritime Day. It was first held in 1978 to mark the 20th anniversary of the IMO Convention's entry into force. Celebrations are held throughout the world to focus attention on the importance of shipping safety, maritime security and marine environment, and to emphasize a particular aspect of IMO's work. India joined the IMO in 1959. This year's theme is Navigating the Future, Safety First, which reflects the International Maritime Organization's work to enhance maritime safety and security in tandem with the protection of the marine environment, while ensuring its regulatory development process safely anticipates the fast pace of technological change and innovation.
और अगर बात की जाए सन 2011 की तो दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया. संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञप्ति में कहा है कि इस परिवहन प्रणाली ने शहर का प्रदूषण स्तर एक साल में काफी कम किया है. और इतिहास के बाद अब कुछ जानी मानी हस्तियों को सारा हम लोग याद कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की. वे गरीबों और दलितों के संरक्षक माने जाते रहे. उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफी जोर दिया. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई तथा वर्ष 1848 में वैताल पंच मिंशंती नामक बंगला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया.
यस, इनफैक्ट हिज एफर्ट्स टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज बांग्ला प्रोज वर क्वाइट सिग्निफिकेंट. ही ऑल्सो रैशनलाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड द बांग्ला अल्फाबेट एंड टाइप व्हिच हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस चार्ल्स विल्किंस एंड पंचानन कौर मुकार हैड कट द फर्स्ट A wooden Bengali type in 1780. He was the most prominent campaigner for widow remarriage, petitioning the Legislative Council despite severe opposition, including a counter petition which had nearly four times as many signatures. Even though widow remarriage was considered a flagrant breach of Hindu customs and was staunchly opposed, Lord Dalhousie personally finalized the bill and the Hindu Widows Remarriage Act of 1856 was passed. He was against child marriage and efforts of Vidyasagar led to the Age of Consent Act in 1891. So we can say that today the modern India owes a lot to the efforts of Ishwarchand Vidyasagar.
जी सर, और अब आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह का आज के दिन जन्म हुआ था। इन्हें यह सम्मान सन 1962 में मरणोपरांत मिला। स्वतंत्र भारत ने चीन से बस एक युद्ध 1962 में लड़ा, जिसने उसे बहुत सारे अनुभव दिए। ये अनुभव फौजी हकीकत से तो जुड़े हुए थे, इनमें राजनीतिक तौर पर भी बहुत कुछ देखने को मिला। इस युद्ध में चीन के साथ लड़ते हुए भारत के चार परिक्रमी योद्वाओं ने परमवीर चक्र प्राप्त किए। इन चारों में से तीन को तो ये यश मरणोपरांत मिला और केवल एक वीर सारी कथा को बताने के लिए जीवित बचा रहा। उन तीनों योद्वाओं में जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए वो थे सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो एक सिख रेजिमेंट के सेनानी भी थे, और तोंगपेन लॉ नेफा में बूमला मोर्चे पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी।
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग मणिलाल नाभूभाई द्विवेदी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, अ गुजराती राइटर, फिलोसफर एंड सोशल थिंकर, कॉमनली रिफर्ड टू एज मणिलाल इन लिटरेरी सर्कल्स। He was an influential figure in the 19th century Gujarati literature and was one of the several Gujarati writers and educators involved in the debate over social reforms, focusing on issues such as the status of women, child marriage and question of whether widows could remarry. So well, let me see, Farhat ke aaj hum log Ishwar Chandra Vidyasagar ko bhi yaad kare, but there are so many other people as well who were probably pioneers in their own era, who, I mean, imagine in those era, aaj bhi widow remarriage ko bahut se log jo hai पसंद नहीं करते, बट कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ ऑपोजिशन दीज पीपल वुड हैव फेस्ड।
बिल्कुल सारा, और एक समय था जब इस तरह की सामाजिक जो क्रूरतियां थी वो छाई हुई थी, तो इस तरह के साहित्यकार जो हुए स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इन सब क्रूरतियों को दूर किया।
And what was notable about Manilal was that, well, he was not, I mean, he took the good things about Western civilization, but he held Eastern civilization in high esteem and resisted the influence of Western civilization, a position which drew him into conflicts with other social reformers of a less conservative outlook. He considered himself a reformer along religious lines. And Manilal's writings belong to the Pandit Yuga or scholar era, a time in which Gujarati writers explored their traditional literature, culture and religion in order to redefine contemporary Indian identity when it was subject to challenge from the influential Western model introduced under the colonial rule. His works include Atmani Maljan, a collection of poems on the theme of love in the context of Advaita philosophy, and Kanta, which is a play combining Sanskrit and English dramatic techniques. Nrusin Vatar, a play based on Sanskrit dramatic traditions, and also a study of yoga and mysticism. So we can say that he was quite a multifaceted personality apart from being a very good writer.
जी सारा, और हम लोग बात ही कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों की, तो एक और नाम इसमें जोड़ लेते हैं। गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे ये टीबी कुन्हा। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके गोवा को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर टीबी कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सहकर गोवा को 1961 में स्वतंत्रता दिलाई। आधुनिक भारत के यशस्वी सपूत टीबी कुन्हा गोवा के जनक के रूप में भी जाने जाते रहे।
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग रवि वासवानी ऑन हिज यू नो बर्थ एनिवर्सरी, एंड इफ यू रिमेम्बर अ वेरी फाइन एक्टर बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन साई परांज फेस चश्मे बदूर एंड कुंदन शाह कल्ट कॉमेडी जाने भी दो यारो, फॉर विच ही ऑल्सो वन द फिल्म फेयर बेस्ट कमेडियन अवार्ड इन 1984। ही वॉज नोटेड फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग एंड अंडर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। इन अ करियर स्पैनिंग 30 ईयर्स ही एक्टेड इन सम 30 फिल्म्स and he died in Haldwani on his way to Delhi from Nainital.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था भारत के प्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता उदय शंकर ने। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। उदय शंकर ने यूरोप और अमेरिका का भारतीय नृत्य और संस्कृति से परिचय करवाया और भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइफ, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इनमें वेशभूषा, संगीत, संगीत यंत्र, ताल और लय आदि चीजें उन्हीं के द्वारा आविष्कृत की गई। वर्ष 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण, 1975 में विश्व भारती ने देशी कुत्तम सम्मान प्रदान किए।
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ वेरी लेजेंडरी सिंगर, एंड फरहत रफी की दौर से पहले एक आवाज थी जो सबके दिलों पे हम लोग कह सकते हैं राज करती थी, एंड दैट वॉइस वॉज ऑफ Hemant Kumar, and his real name was of course Hemant Mukhopadhyay, and professionally known as Hemant Mukherjee as well. He was a legendary music director as well and playback singer who primarily sang in Bengali and Hindi as well as other Indian languages like Marathi, Gujarati, Odia, apart from many other languages. But he was an artist of Bengali and Hindi film music, Rabindra Sangeet, and many other genres. He was the recipient of 2 national awards for Best Male Playback Singer and was popularly known as the Voice of God.
जी बिल्कुल सर, उसके साथ उन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण भी किया जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया. फिल्म में समीक्षक ज्योति वेंकटेश के मुताबिक हेमंत कुमार अपने दौर की सबसे प्रतिभाशाली फनकारों में से एक थे. संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष इस कलाकार को रविन्द्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता था. फिल्म आनंद मठ की सफलता के बाद हेमंत कुमार बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हुए. आनंद मठ में लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ वंदे मातरम आज भी श्रोताओं को जोश से भर देता है. इस बीच एसजी बर्मन के संगीत निर्देशन में जाल, हाउस नंबर 44 और 16वां साल जैसी फिल्मों के लिए भी हेमंत कुमार ने गाने दिए.
यस, सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल मेडली ऑफ सम ऑफ हिज सॉन्ग्स. लेट्स लिसन टू इट.
अपना दिल तो आवारा न जाने किस से आएगा. हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा. बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस से आएगा. याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम.
प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम.
न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया.
And for her, Jay, you mentioned some of the notable films in which Hemant Kumar sang, and some of the very popular songs, Ye Raat, Ye Chandni, Phir Kahan, Chup Hai Dharti, Teri Duniya Mein Jeene Se, all these were actually had one thing in common, and that was Hemant Kumar's voice, S.P. Barman's music, and Dev Anand on the celluloid.
जी बिल्कुल सारा, और आपने देवानंद के गीतों की बात करी तो आज ही के दिन जन्म हुआ था देवानंद का. भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रसिद्ध अभिनेता रहे जो जीवन भर सक्रिय और चर्चित रहे. वो अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी रहे. वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म जिद्दी में अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ देवानंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई.
Yes, his real name was Dharamdev Kishorimal Anand, but nobody would probably know that Kishorimal Anand is actually Dev Anand. And unki sabse jo khubi thi, agar aapne notice kiya Farat, that he even well he came to the movies even when he was much older, but he never ever played the role of a father. Unko unme se nahi the ke jo apne heydays mein hero bane aur baad mein when you know age started to come, he always wanted to be the main lead. He was always a very young at heart artist, isn't it?
Ji.
And well, he is considered as one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema. And through a career that spanned over 6 decades, he worked in more than 100 films. He is a recipient of 4 Filmfare Awards, including 2 for Best Actor. The Government of India honored Devanand with Padma Bhushan, which is India's 3rd highest civilian honor in 2001, and also the Dada Saheb Phalke Award in 2002.
तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अगा है वो बहार है. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया. आता रहे मेरा दिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. बर्बादियों का सब मनाना फजूल था.
देवानंद ने कई फिल्मों की पटकथा भी लिखी, जिसमें वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आंध्या के अलावा हरे रामा हरे कृष्णा, हम नौजवान, अव्वल नंबर, प्यार का तराना, गैंगस्टर, मैं 16 बरस की, सेंसर आदि फिल्में शामिल हैं।
एंड समी आर देवानंद टू सम अप हिज लाइफ इन एन इंटरव्यू, सो ही आंसर्ड दैट ये जो गाना था ना जो उन्होंने सुनाया, उन्होंने बस इसी में कहा कि मेरी जिंदगी यही है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले।
मुझे लगता है सबको यही सोचना चाहिए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाना चाहिए।
यस, ऑन दैट नोट आई थिंक इट्स कॉल टू यू नो कॉल इट अ रैप।
वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।